हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के 16वें अध्याय का 39वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, काम धिया त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम बीजानि ज्ञान आत्मनि अगुणमये गुण गणतः अस्य द्वन्द्वजालानि कामधियस्त्वयि रचिता नापरं रोहन्ति यथा करम बीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोस्य द्वन्द्वजालानि कामधियस्त्वयि रचिता नापरं रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञानत्मन्य गुणमये गुणगणतोस्य द्वन्द्वजालानि। शब्दार्थ काम धियः इंद्र तृप्ति की आकांक्षाएं, त्वयि तुम में रचितः संपन्न की गई, ना नहीं परम श्री भगवान रोहन्ति उगते हैं, अन्य शरीर उत्पन्न करते हैं, यथा जिस प्रकार करम्भ बीजानि भुने बीज, भुने हुए जो बीज होते हैं, ज्ञान आत्मनि तुम में जो ज्ञान से पूर्ण है, अगुणमय जो भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है, गुणगणतः भौतिक गुणों में से अस्य व्यक्ति का द्वंद्वजालानि द्वैतता का जाल। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य के कारण इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जिस प्रकार भुने बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते। जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, परंतु आप तो दिव्य हैं। अतः जो आपसे संगति करता है वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। तात्पर्य, भगवत गीता 4:9 में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जन कर्म च नेतव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह देह त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण भावना मृत में लगाता है तो उसे स्पष्ट जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी श्री भगवान की भक्ति करता है, वह भले ही भौतिक कामनाओं से पूरित हो किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणारविंद के प्रति आकृष्ट होता जाता है। परमेश्वर और उनका पवित्र नाम एक ही है, इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई येन केन प्राकृतेन कृष्ण भक्ति करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है कामात द्वेषात भयात स्नेहात। यदि कोई कामवश द्वेषवश भयवश या स्नेहवश कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसमें थोड़ा ट्रांसलेशन में कुछ कमियां हैं इसके अंदर, जैसे शब्दार्थ में जब बोला है द्वई तो द्वई यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग किया गया, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेशन इसका अनुवाद किया तुम में, जबकि यहाँ पे आप में होना चाहिए था ना। हाँ, ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहले जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं क्योंकि भक्त इतने ज्यादा नहीं थे तो उस समय जो बाहर के कार्मिक लोगों से भी अनुवाद करवाए हैं तो उस कारण से भी कुछ कमियां हैं। जो कार्मिक हो तो यू का तुम करेगा ट्रांसलेशन है, सो ये भी कारण है। ये तो कार्मिक ट्रांसलेशन है क्योंकि यहाँ पर अब इंग्लिश में लिखा है कि पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद मटेरियल डिजायर, तो यहाँ पर लिखा है ऐश्वर्य के कारण भौतिक इच्छाएं होना चाहिए था, भौतिक इच्छाओं से बात ज्यादा क्लियर होती है। कभी ऐसे चैतन्य चर्चा में जब भी उसका सुधार हो चुका है, छप जाएगी 2-3 महीने में आ जाएगी किताब हिंदी की चैतन्य चर्चा में, सो कभी इसका भी सुधार होगा तो बाद की सेवा में कोई ना कोई लगेगा ही। सो ये चित्रकेतु की कथा चल रही है यहाँ पर, और चित्र केतु से आप सब परिचित ही हैं। तो चित्र केतु की जो कथा है, जब हमारे मुरली कृष्ण प्रभु जब गुरु पूजा गा रहे थे जब, तो मैं सोच रहा था कि चित्र केतु का जीवन जो है वो कितना, उस पर पूरी गुरु की कृपा कितनी, मतलब आप देख सकते हैं है ना, कि कहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो पहले पुत्र इच्छा में और फिर पुत्र के वियोग में रोए जा रहा है, परेशान है, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा। हमारी तरह हम भी भौतिक लोग सदैव भौतिक इच्छाओं में, जो नहीं मिला उसके लिए और जो खो गया उसके वियोग में सदा चिंतित रहते हैं। तो चित्रकेतु का भी यही हाल था। जब वो पुत्र इच्छा और इस वियोग, इस दुख की घड़ी में उनके पास भगवान के प्रतिनिधि आए, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि, और उन्होंने उसका जीवन ही पलट दिया, पूरा जीवन ही उसका बदल दिया। कहां पर वो सदैव चिंतित रहता था और कहां पर कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में तो विद्याधर बन गया था वो, और कुछ ही दिनों में उसको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, उसको संकर्षण के दर्शन प्राप्त हो गए। चार कुमार साथ में थे, उनके दर्शन प्राप्त करके वो गदगद हो गया। सो गुरु की कितनी कृपा है। तो गुरु पूजा जब ये गाए जा रही थी, तो उसमें क्योंकि इस श्लोक पे बोलना था, तो मैं यही सोच रहा था कितना उपयुक्त है, और गुरु की जो कृपा है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए या गुरु से कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, चापलूसी करने के लिए ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा को हम लोग बोल भी नहीं सकते, अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार भगवान की कृपा अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार गुरु की कृपा भी अनिर्वचनीय है। लेकिन कुछ तो बोलना है, इसलिए गुरु पूजा में हम ये बोलते हैं। तो ये जो वृतांत आया कहां से चित्रकेतु का, ये बात बहुत पहले शुरू हुई थी। एक ब्राह्मण थे विश्वरूप, है ना, वो विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे, यज्ञ करते थे देवताओं के लिए। और जब यज्ञ का जो पुण्य है, जब उसको बांटने की बारी आती थी, तो थोड़ा देवताओं को देते थे और थोड़ा असुरों को भी दे देते थे। असुरों के साथ उनकी उनकी आसक्ति थी, उनकी उनकी उनको प्रेम था कुछ असुरों से। तो इंद्रदेव को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसका वध कर दिया विश्वरूप का। तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उनको। तो उन्होंने फिर ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, और स्त्रियों को, पेड़ों को, भूमि को और जल को प्रदान कर दिया। उनको से कुछ फायदे भी हुए इन चारों को, कुछ है ना। आप सब इस बारे में पढ़ चुके हैं, मैं संक्षेप में इसकी चर्चा कर रहा था। पीछे के तीन चार अध्याय इसी विषय में बात कर रहे हैं, है ना। तो बात यहां पर खत्म नहीं हुई। तो विश्वरूप के पिता का क्या नाम था? त्वष्टा, है ना। तो त्वष्टा को क्रोध आना स्वाभाविक था, तो उसने यज्ञ किया। उसने ये सारी बातें सत्युग के अंत की बातें हैं, सत्युग खत्म हो रहा था, त्रेता युग शुरू हो रहा था, उस समय की बातें हैं सारी। उस समय भी देखो कैसे गलतियां हो रही थी। सो उसने त्वष्टा ने एक यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। उसने ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र का शत्रु पैदा हो। तो जैसे उसको बोलना मंत्र का उच्चारण करना चाहिए था कि इंद्रस्य अरि या इंद्रस्य शत्रु, ऐसे कुछ बोलना चाहिए था उसको। लेकिन वो पंडित जो पुरोहित उस समय भी उसने गलत बोल दिया मंत्र, है ना। तो इंद्रस्य शत्रु या इंद्रस्य अरि, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, वो बोलने की जगह उन्होंने बोला इंद्र यस्य शत्रु, कि जिसका इंद्र शत्रु है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से, किसी के शत्रु होते हैं, लेकिन वो आप आपसे शत्रु नहीं, आपसे कोई उसको वैर नहीं होता है ना। जिस तरह भौतिक लोग हैं वो भक्तों के शत्रु होते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या भक्त अभक्तों के शत्रु होते हैं? बहुत के शत्रु होते हैं, है ना। तो चलो यज्ञ पूरा हुआ तो एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। उसका नाम था वृतासुर। वो इतना भयंकर राक्षस था कि देवता उसको देख के भाग गए, है ना। लेकिन क्या वो इंद्र का शत्रु था? वो इंद्र का शत्रु नहीं था, उसको इंद्र से कुछ वैर नहीं था, इंद्र को उससे वैर हो गया बिना किसी कारण से। इंद्र को उससे वैर हो गया तो इंद्र उसको मारने के लिए आया। तो पहले तो उसने बहुत सारे देवताओं को मार दिया वृतासुर ने। फिर लड़ाई हुई इंद्र और वृतासुर में। तो पहले तो सब घबरा गए कि इसको मारेंगे कैसे, इतना भयंकर राक्षस है। तो दधीची मुनि की जो है उनकी हड्डियां लेके आए और उससे वज्र बनाया है कि इससे मार सकते हैं इसको, है ना। क्या क्या करना पड़ता है सुख भोगने के लिए, नहीं। सो चलो, तो इंद्र और वृतासुर की लड़ाई शुरू हुई आखिर में। सो इंद्र ने एक भुजा काट दी वृतासुर की। पहले तो उस पर अपना वज्र फेंका, तो उन्होंने पकड़ लिया उसको कुछ को, और एरावत हाथी की पिटाई कर दी। वृतासुर ने इतने शक्तिशाली थे, एरावत जो है वो भी पीछे हो गया, इतने शक्तिशाली थे। तो फिर एक भुजा काट दी, फिर दूसरी भुजा से उन्होंने इंद्र पे प्रहार किया तो इंद्र का वज्र नीचे गिर गया। तो इंद्र को बहुत शर्म आ गई, वज्र नीचे गिर गया कैसे उठाऊं, इतनी शर्मिंदगी वाली बात थी। तो वृतासुर ने बोला उठा लो कोई बात नहीं, क्या हो गया, गिर गया, कोई बात नहीं। सो इंद्र युद्ध नहीं करना चाहते थे, बहुत मतलब शर्मिंदा हो गए थे। तो वृतासुर ने कहा अरे बात सुनो, कहां जा रहे हो, युद्ध करो, तुम आए हो युद्ध करने के लिए, युद्ध करना तुम्हारा फर्ज है, मर गए तो भी क्या है भगवान। और उन्होंने अपने सैनिकों को भी यही बात बोली थी वृतासुर ने असुर होने के बाद। तो खैर इंद्र ने उनके कहने पर, वृतासुर के कहने पर उनको फिर से उनसे युद्ध किया, उनको एक साल लगाकर मार दिया। तो महाराज परीक्षित ये कथा सुनने थे तो बड़े हैरान हो गए, बहुत ही हैरान हो गए। और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, एक असुर है वृतासुर, उसमें इतने गुण कहां से आ गए उसके अंदर। उसने इंद्र से बात की बहुत ही अच्छी बात की, उसने अपने सैनिकों से बात की बहुत ही अच्छी बात की, तो इतना इतना मतलब गुणवान कैसे हो सकता है असुर। असुर का मतलब तो गंदे गुण होते हैं, है ना, लालची, भोगी, ईर्ष्यालु। वृतासुर ऐसा क्यों नहीं था, इसका क्या कारण है? तो देखो उसने प्रश्न पूछा, पूरी भागवतम और पूरी भगवत गीता किस पे आधारित है, जिज्ञासा पे आधारित है, है ना। अर्जुन ने जिज्ञासा की, हमें भगवत गीता प्राप्त हुई। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की तो हमें भागवतम प्राप्त हुई, नहीं तो क्या होता अगर वो जिज्ञासा नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी कहते हरे कृष्णा बोलो, वो हरे कृष्णा करने चले जाते, काम खत्म हो जाता, नहीं। लेकिन उन्होंने जिज्ञासा की, मरणासन थे वो, फिर भी जिज्ञासा की और हमें भागवतम जैसा अमर शास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए जिज्ञासा करना बहुत ही आवश्यक है ना। तो उन्होंने जिज्ञासा की शुद्ध गोस्वामी से ऐसा कैसे हो गया, ये असुर में इतने गुण कहां से आ गए। तो फिर उन्होंने उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। तो इसीलिए हमें चित्रकेतु की यह कथा प्राप्त हुई हमें, है ना। तो आप सोचिए कि अगर परीक्षित महाराज ये जिज्ञासा ना करते तो हमें चित्रकेतु की ये कथा इतना सुंदर संवाद में प्राप्त नहीं होता। और एक और चित्रकेतु जैसा व्यक्ति जो कि बहुत ही भौतिक व्यक्ति था, सांसारिक व्यक्ति था, दुखी था, उसमें ऐसे गुण विकसित हो गए साधु संघ से कि भगवान का दर्शन तो प्राप्त हुआ ही। उसने भगवान की इतनी सुंदर उन्होंने जो है स्तुति की, भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की कि उसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते रहे तो भी कभी हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसका अर्थ समझा नहीं सकते। इतनी सुंदर स्तुति करते उन्होंने, है ना। और उनको स्तुति करने में टाइम लगा, उनको ऐसे नहीं भगवान सामने स्तुति शुरू कर दी। इतने भावाभिभूत हो गए वो कि कुछ समय तक बोल ही नहीं पाए और भगवान भी धैर्य से वहां पर खड़े रहे। और फिर उन्होंने जो है भगवान की स्तुति की, संकर्षण की। और जब इसमें एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब अंगिरा ऋषि पहली बार उनसे मिलने आए थे तो तुरंत उनसे उन्होंने देखा है दुखी है, दुखी तब भी थे पुत्र इच्छा से, लेकिन उन्होंने तब उनको भगवत ज्ञान नहीं दिया, है ना। उन्होंने कहा ठीक है आप इच्छा पूरी करना चाहते हो, आप इच्छा पूरी कर दो। पुत्र उनको पुत्र का वरदान दे दिया उनको। तो उनकी पत्नी थी कृता द्वितीय, उनकी तो करोड़ों करोड़ उनकी पत्नियां थी और उसमें से एक का नाम था भाग्यशाली आप कह सकते हो कृता द्वितीय, उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब तक अंगिरा ऋषि ने उनको भगवत ज्ञान नहीं दिया था, तब तक नहीं दिया था, है ना। कितना धैर्य है उनमें, ऐसा थोड़ा ना कि अंगिरा ऋषि को पता नहीं था कि चित्रकेतु के लिए क्या अच्छा है, लेकिन कितना धैर्य रखा। कई वर्षों तक धैर्य से प्रतीक्षा करते थे कि जब उचित समय आएगा तब इसको ज्ञान दूंगा, अभी बोलूंगा तो बंजर जमीन में बीज बोने के समान है, उगेगा नहीं, है ना। तो जब उपयुक्त समय आएगा तभी मैं इसको भगवत ज्ञान दूंगा। और सारे भक्तों को भी ऐसा ही करना चाहिए, जितने भी प्रचारक हैं, प्रचारक के अंदर ऑफ कोर्स उसको शास्त्रों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी वो प्रचार कर पाएगा, बिना शास्त्रों का ज्ञान के बोल ही क्या पाएगा वो। लेकिन उसको साथ में बहुत धैर्य रखना चाहिए उसको, है ना। अधीरता पूर्वक अगर वो प्रचार करेगा बहुत ही सोच के कि मैं तो बहुत उत्साहपूर्वक प्रचार कर रहा हूं, तो हो सकता है उसका फल नहीं मिले। पहले देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या बोलना उचित है और उचित समय आने पर ही जो आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं उनको उनके अनुसार उचित ज्ञान देना पड़ेगा, तब उसका उचित प्रभाव पड़ेगा श्रोता के ऊपर। अगर ऐसे ही उनको सबको अगर आप जो है रस तत्व की बातें करना शुरू कर दो तो लोग समझेंगे भी नहीं, गलत मतलब भी निकालेंगे, और जो आप चाहते हैं कि वो भगवान के भक्ति में जुड़े अच्छी तरह से, वो भी जो है आपका जो मंतव्य है जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो अंगिरा ऋषि ने प्रतीक्षा की और अगली बार अकेले नहीं आए, नारद मुनि को लेकर आए। और नारद मुनि ने जब देखा कि इसका हृदय अभी बहुत ही कोमल हो चुका है दुख के कारण, तो उसको भगवत तत्व बताया उसको, और उनको महाविद्या नामक मंत्र दिए उनको, जिसका उच्चारण करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तो यहां पर सो ये तो उसकी पृष्ठभूमि है, ये जो श्लोक चल रहे हैं ये उसकी पृष्ठभूमि है ना, क्योंकि काफी समय हो गया था आप लोगों को इस बारे में सुने होंगे, 2-3 महीने हो गए होंगे ये प्रसंग चले जा रहा है। तो मैंने कहा एक बार जो है एक सार रूप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चित्रकेतु यहां पर कह रहे हैं कि जो भौतिक, जिनमें भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी अगर आपकी पूजा करते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं, तो भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भुने हुए बीज से पौधे नहीं निकलते, भुने हुए बीज से पौधे नहीं निकलते। तो भगवान भी कह रहे हैं कि चार तरह के लोग मेरी भक्ति में जुड़ते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नर्चना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष भाव। कि चार तरह के लोग मेरी भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसमें जो आर्तो है, जो भौतिक दुखी है और अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी मतलब जिसको भौतिक इच्छा है, जो किसी भी प्रकार से येन केन प्राकृत, और प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं कामात द्वेषात भयात स्नेहात, चाहे काम इच्छा से चाहे किसी भी भौतिक इच्छा से कम यह तो मानिए कि मेरी इच्छाएं पूरी करने में भगवान कृष्ण समर्थ है। ये कोई छोटी बात नहीं है ना, ये विश्वास होना कि भगवान कृष्ण मेरी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसे कोई छोटी बात मत समझिए। जब तक ये बात हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भगवान के पास आएंगे नहीं अपनी इच्छाएं लेकर। नहीं, अगर हमें पता है इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कौन भीख मांगेगा उससे? कोई एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगता है? सब कार वाले से भीख मांगते हैं, नहीं है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम सोच रहे हैं क्या भौतिक इच्छाएं लेके आ गया, भौतिक इच्छाएं मन के बराबर है, क्या फायदा बताओ, कितना नीच है। अरे नीच नहीं है, उसमें यह श्रद्धा है, उसमें यह विश्वास है कि भगवान कृष्ण में यह शक्ति है मेरी इच्छाएं पूरी करने की, इसलिए आया। बहुत ही ऊंची स्थिति है ये बात अलग है कि निष्काम भक्त से नीची स्थिति है, लेकिन इसको हम कम करके नहीं आ सकते। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम ये नहीं कह सकते कि कम है, ये स्थिति बेकार है, भोगी है ये। हमेशा भगवान कहते रहते हैं भगवान पैसे हो, ऐसा नहीं है। जो आ रहा है इस भावना से भी चाहे आए वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बार वो भगवान की शरण में आ गया, किसी भी प्रकार से एक बार भगवान की शरण में आ गया, तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे 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 ध्रुव महाराज का हुआ, ध्रुव महाराज तो इतने मतलब इतने उत्सुक थे राज्य प्राप्त करने के लिए, वो कह रहे थे अब मेरे पिता के राज्य से सब बेकार चीज नहीं चाहिए मेरे को, मुझे तो ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिता के राज्य उसके सामने फीका लगे। उनकी माता ने उनको जो है उन पे ताना कस दिया था, उन पे ताना मार दिया था। सो ध्रुव महाराज तो भौतिक इच्छा से ही भगवान की शरण में गए, नहीं? और फिर क्या हुआ, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने उनको बोला आपको क्या मांगते हो, है ना। भगवान भी बहुत चलाक है, भगवान ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट होके ऐसी बात बोलते हैं जो उसके लिए बेकार हो जाती है। भगवान तब एक भक्त से पूछते हैं मांगो क्या मांगते हो, जब भगवान को पता होता है ये अब कुछ नहीं मांगेगा, है ना। सो भगवान ने ध्रुव महाराज से पूछा अच्छा बोलो क्या मांगते हो। सो ध्रुव महाराज ने कहा स्वामी, हे स्वामी कृतार्थ हो, स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, वरम ना याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो कहा भौतिक इच्छाओं से भरपूर होकर वो भगवान की शरण में आया और कहा कह रहे हैं कि भगवान वरम न याचे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। यही सोचकर चित्रकेतु जो है ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में आओ तो आपके सारे कर्म क्या हो जाएंगे, आपके सारे कर्म इस प्रकार हो जाएंगे जैसे भुने हुए बीज होते हैं। और भगवान स्वयं इस बारे में बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। भगवान ने गोपियों को बोला भागवतम के दशम स्कंद में 22वें अध्याय में भगवान ने गोपियों से कहा देखो जो मुझ में जिसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाए, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी शरण लेता है, उसके जितने भी कर्म फल हैं उसके वो सारे कर्म फल ऐसे हो जाएंगे जैसे भुने हुए बीज हैं। कर्म बीज हैं, भुने हुए बीज हैं। और भुने हुए बीज जो है जब उसको चाहे कितने ही उपजाओ भूमि में बो दो, उसको चाहे कितना ही जल दे दो, उसमें कभी भी अंकुरित नहीं होगा, वो कभी भी कोई फल नहीं उगेगा, कभी भी कोई फल नहीं उगेगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इतना जोर क्यों डाल रहे हैं इस बात पे, इतना जोर क्यों डाला जा रहा है इस बात पे, नहीं ये प्रश्न उठना चाहिए। इतना जोर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म करने का, कभी खत्म नहीं होती। भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जो किसान है, किसान जब खेती करता है तो उससे पहले वो जमीन को खोद खोद कर सारी खरपतवार निकाल देता है ना। जमीन को खोदता है, सारी खरपतवार साफ करता है और फिर नए बीज बोता है और खेती करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, फिर से खरपतवार उगाती है। उसने बहुत ही प्रयास किया था उसको हटाने का, लेकिन फिर भी हटा नहीं पाया, कुछ रह गई। और उसी प्रकार से है कि जब आपने किसी बर्तन में कपूर रखा आपने और कपूर को आपने उस बर्तन से हटा दिया, तो जब आप उस बर्तन को सूंघेंगे तो क्या मिलेगा, आप में उसकी खुशबू मिलेगी। आपने हटा दिया, उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया, फिर भी उसकी खुशबू उसमें रह जाएगी। इसी तरह से हम जितना भी प्रयास कर लें भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आप आ जाओ, जिसने चाहे भौतिक इच्छाओं के कारण ही मेरी शरण में आ गया तो उसकी सारी इच्छाएं इस प्रकार हो जाएंगी जैसे भुने हुए बीज होते हैं, पड़े हुए जितना मर्जी पानी डालता उसके ऊपर, उसमें वो अंकुरित होगा ही नहीं, बात खत्म हो गई, है ना। आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं, यह सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझ में भौतिक इच्छाएं ना आ जाए दोबारा से। क्यों? क्योंकि वो उनमें उन भौतिक इच्छाओं में अंकुर उन बीज बीजों में अंकुरित होने की शक्ति खत्म हो गई है। और ब्रह्मा जी भी इस बात को कह रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा। इंद्र और इंद्र गोपम, ये इंद्र से लेके इंद्र गोपम तक कर्म के बंधन में ऊपर नीचे लगातार चलते जा रहे हैं। कभी इंद्र बन रहे हैं, कभी सांप बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। छुटकारा ही नहीं मिल रहा। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, अगर भगवान की भक्ति में जुड़ गए, चाहे किसी भी मंतव्य से जुड़े, कर्माणि निर्दहति, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फूस का ढेर हो, छोटी सी चिंगारी भी उसको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में जुड़ने से ही सारे भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा किस प्रकार होता है कि भगवान की भक्ति में जुड़े और सारी हमारी काम इच्छाएं खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान मदन मोहन है ना। भगवान कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं, कामदेव को भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं, और जिन लोगों को कामदेव परेशान कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। जब कामदेव स्वयं ही आकर्षित हो गए, जब मदन खुद ही आकर्षित हो गए, तो मदन से परेशान लोगों का कहना ही क्या। वो तो उनके लिए, भगवान के लिए आकर्षित होना तो एक चुटकी की बात है, तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य ने बोला है कि भक्ति की शुरुआत होती है मदन मोहन की शरण लेने से, जो कि हमारे संबंध विग्रह हैं। जब हम मदन मोहन की शरण लेते हैं, जब मदन मोहन की शरण लेने का मतलब है भगवान से संबंध स्थापित करना। जब भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान हमारी सारी काम इच्छाओं को आकर्षित कर लेते हैं, और हमारी सारी काम इच्छाओं को वो भक्ति की इच्छाओं में परिवर्तित कर देते हैं। सारी काम इच्छाओं, इसीलिए रूपा गोस्वामी ने कहा, रूपा गोस्वामी ने दो गोपियों का वार्तालाप का वर्णन किया। रूपा गोस्वामी, रूपा गोस्वामी कहते हैं कि देखो वृंदावन मत जाना, वृंदावन जाना अच्छा नहीं है, वृंदावन चले गए तो केशी घाट पर मत जाना। बड़ी अजीब सी बात है नहीं, सब लोग कह रहे हैं वृंदावन चलो वृंदावन चलो, लेकिन रूपा गोस्वामी कह रहे हैं देखो केशी घाट पर मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि अगर आप में अपने संपत्ति, परिवार, पुत्रों, ऐश्वर्य को भोगने की जरा सी भी इच्छा है तो वहां मत जाना, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि त्रिभंगी है और वो मधुर बांसुरी बजा रहा है। अगर आपने उसको एक बार भी देख लिया तो फिर आप भौतिक सुख नहीं ले पाओगे, तो आप भौतिक सुखों को भोग नहीं पाओगे आप। तो अगर आप में भौतिक सुखों को भोगने की लेश मात्र भी इच्छा है तो वहां मत जाना। पिछले श्लोक में उन्हीं लोगों के बारे में चित्रकेतु ने वर्णन किया, इससे जो पिछला श्लोक है वो उन्हीं लोगों के बारे में वर्णन है। और ये खुद भी ऐसे थे चित्रकेतु, ऐसा नहीं कि कोई अलग से किसी अलग डाई में बन के आए थे, ये भी ऐसे ही थे। तो अगर चित्रकेतु के लिए आशा है तो क्या हमारे लिए नहीं है आशा की किरण? हमारे लिए भी आशा की किरण है। अगर चित्रकेतु का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हमारा हृदय परिवर्तन भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एक प्रश्न यहां पे, ये आखिरी प्रश्न मैं उठाऊंगा इस प्रवचन में, फिर विराम दूंगा, कि चित्रकेतु ये क्यों कह रहे हैं कि यदि भौतिक इच्छाओं से जो पूरी तरह जो भौतिक इच्छाओं में डूबे हुए लोग हैं वो अगर भगवान की भक्ति में जुड़ जाएं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हो? भौतिक इच्छाओं भोगी लोगों की बात क्यों कर रहे हो, है ना? भगवान सामने खड़े हैं, वो भोगी लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न यहां पर एक खड़ा होता है। आप में से कोई बताना चाहेगा? सो उन्होंने ऐसा भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए, भक्ति की महिमा को बताने के लिए क्या, वो कह रहे हैं कि अगर भौतिकता में डूबे हुए लोग भी अगर भगवान की शरण ले लें तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तो जो पूरे भक्ति भाव से भगवान की शरण लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है ना, उनका तो कहना ही क्या, उनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनको क्या लाभ मिलेंगे। उनको यहां पर ये बात चित्र पे तो कहना चाह रहे हैं। और इस विषय में श्री जीवा गोस्वामी गोपाल चंपू में चर्चा करते हैं, बिल्कुल शुरू शुरू में, गोपाल चंपू का एकदम शुरू में ही कह रहे हैं, पूर्व चंपू में वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म संहिता का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो आदि श्लोक हम बोलते हैं ब्रह्म संहिता का, कि भगवत धाम में चलना नृत्य करना है, बोलना गीत गाना है ना। तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि ये तो है ही, चलना नृत्य करना है, बोलना गाना गाना है, गीत गाना है। तो जब वो गीत गाते हो तू क्या होता होगा, नहीं हम लोग कभी सोचते नहीं इस बारे में। हम सोचते हैं अच्छा देखो चलना नृत्य करना है। वो कह रहे हैं जब वो नृत्य करते होंगे तो क्या होता होगा, सोचिए, है ना। तो जब इस तरह की बात हो कि भौतिक लोगों का उद्धार हो जाता है या चलना नृत्य करना है, तो उस समय में यह भी सोचना चाहिए, जीवा गोस्वामी हमें आग्रह कर रहे हैं कि हम यह भी सोचें कि जब हम वाकई में वहां पर जब नृत्य करेंगे तो क्या होगा, तो कमाल ही हो जाएगा। नहीं, जब हम वहां पर, जब भक्त वाकई में वहां पर गीत गाएंगे तो मतलब बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। तो उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहां पर जाना होगा। जाएंगे तो ही तो देखेंगे, नहीं अभी किसी भी सिनेमा हॉल में कोई भी पिक्चर लगी है बाहर खड़े होकर तो ना देख सकते हैं, बाहर से तो पोस्टर ही दिखेगा, ये पोस्टर है नहीं। पिक्चर देखनी है तो हॉल में जाना पड़ेगा ना अंदर, नहीं। सो, अगर हम उन अद्भुत दृश्यों का अगर आस्वादन करना चाहते हैं तो हमें भी वहां पर जाना होगा, और वो हम जा सकते हैं भगवत भक्ति करके। ठीक है, तो इसको यहां पर विराम देते हैं। विराम देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं बहुत आभारी हूँ गोपाल कृष्ण महाराज का कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया, और रुक्मी कृष्ण प्रभु का भी कि उन्होंने मेरी सारी कमियों को, दोषों को, अपराधों को, अहंकार को अनदेखा करके मुझे सेवा का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव, या कोई टिप्पणी है आपकी तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके दो उत्तर हैं। इसके दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। सो पहला तो ये है कि भगवान को देखकर भी लोग देख नहीं पाते, नहीं? जब भगवान कृष्ण स्वयं यहां पर लीला कर रहे थे तो करोड़ों लोग उनको देख रहे थे, लेकिन सब लोग भक्त नहीं बन पाए, है ना? ये यथा माम परिपद्यन्ते ताम सताय भजामि। हम जितना शुद्धिकरण होता है उसके अनुसार ही भगवान कृपा करते। तो ये एक है, इसको मैं निम्न कोटि का दृष्टिकोण मानता हूं। ये है एक दृष्टिकोण, लेकिन मैं निम्न कोटि का दृष्टिकोण मानता हूं, बल्कि मैं खुद भी हैरान था। अगर हम चित्रकेतु का उदाहरण ले तो चित्रकेतु ने भगवान का दर्शन किए और फिर क्या हुआ, वो भगवधाम गए? वो भगवधाम नहीं गए, वो गंधर्व लोग चले गए, है ना? मैं खुद बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा भगवान के दर्शन ही कर लिए और गंधर्व लोग चले गए, नहीं? मणिगिरी और नलकुबर और मणिगिरी में भगवान का दर्शन कर लिया, स्पर्श कर लिया भगवान का, और फिर भी अपने धाम चले गए, अपने घर चले गए, भगवत धाम नहीं गए। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है, नहीं? तो मैंने फिर इसका उत्तर ढूंढा, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की, कई भक्तों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा देखो इसका कारण है, इसका जब चित्रकेतु गंधर्व लोग गए या नलकुबर मणिगिरी जो है वो अपने घर चले गए, तो वहां पर किस लिए गए? वो कि वहां पर जाके भगवान का गुणगान करेंगे, वो शुद्ध हो गए। अभी उनको भगवत धाम जाने की, किसी भी भक्त को भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं होती, है ना? और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी यही है, भक्त की इच्छा ये होती है कि मैं जहां भी रहूं भगवान का गुणगान करूं। इसीलिए चित्रकेतु भी जब गंधर्व लोग गए तो वहां पर मतलब कुछ भोग करने नहीं गए, वहां पर वो गए भगवान का गुणगान करने के लिए। नलकुबर मणिगिरी भी अपने घर गए, वहां पर वो इसलिए गए ताकि भगवान का वहां पर गुणगान कर सके, लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बता सके, लोगों को भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में बता सके, है ना? ये भी एक दृष्टिकोण। बाकी जो आप जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा कि वहां पे वो क्या रहा है, मुझे अभी ध्यान नहीं है उसके बारे में। इनका प्रश्न था कि जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने भी भगवान की जो है पूजा की, उन्होंने दर्शन भी किया उन्होंने, और फिर भी उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई, है ना? उनका यह प्रश्न है, तो मुझे वो प्रसंग भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये दो दृष्टिकोण हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं उसको समझने के लिए, ठीक है? और किसी का
उद्देश्य है शुद्ध भक्ति, लेकिन हम भौतिक इच्छाएं भी खरीदते हैं। तो महाराज का जो पर्पज था डिवोशन लाइफ में जाने का, क्लियर कट भौतिक इच्छा थी। हमारे साधक का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं उसके अनर्थ हो सकता है। एक दूसरी तरफ एक भक्त है जो कि पूरी अपनी अनर्थों की पूर्ति करने के लिए भगवान को अप्रोच करते हैं। हम देखते हैं अनर्थों की पूर्ति के लिए भगवान को अप्रोच करते हैं तो आसानी से शुद्धिकरण हो, भक्ति की इच्छा रख के कर रहे हो अनर्थों से पीड़ित करो, बहुत संघर्ष करना।
हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो भौतिक इच्छाएं पूर्ति कर रहा है, करने की इच्छा कर रहा है, हाँ, उसको तो जल्दी कृपा मिल गई, और जो अनर्थों को काटने की कोशिश कर रहा है, जो जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, हाँ, उसको तो उसकी तो रगड़ाई हो रही है उसकी, नहीं, उसको बार बार उसको पीसा जा रहा है उसको, नहीं, बड़ी हैरानी की बात है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें बहुत ही बड़ा भेद है दोनों के अंदर, बहुत ही बड़ा भेद है कि एक बात तो ये भी है कि भगवान जो है ये इस ऐसा करके भगवान भक्ति की महिमा को बताते हैं, उनकी शरण स्वीकार करने के महत्व को बताते हैं, एक तो ये बात है ही, है ना। और दूसरी बात ये है कि भगवान की कृपा प्राप्त करना और भगवतधाम जाना एक बात है, और भगवान को अपने वश में कर लेना वो दूसरी बात है। भगवान आपको भगवतधाम ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाएंगे, लेकिन आपकी चप्पल नहीं उठाएंगे वो इतनी आसानी से, जैसे नंद महाराज की चप्पल उठाई, इतनी आसानी से वो आपकी ठोकर नहीं खाएंगे जैसे अर्जुन से खाए, इतनी आसानी से वो रस्सी से नहीं बंधेंगे यशोदा माँ से बंधेंगे। उस स्थिति को देने के लिए वो रगड़ाई करते हैं भगवत की। तो जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसको और ज्यादा शुद्ध करने के लिए उसको और ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि अगर भौतिक इच्छा वाले को परीक्षा में डाला आ जाएगा नहीं, लेकिन भक्त को परीक्षा में डाला तो जो भक्त है वो भक्त को परीक्षा में डालने से भगवान भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। भगवान भक्त को परीक्षा में डालते तभी हैं जब उनको पता होता है ये पार करने की क्षमता है, वो कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग सवाल है, लेकिन भगवान उसी भक्त की परीक्षा लेते हैं जिनमें भगवान देख लेते हैं कि इसमें इस परीक्षा को पार करने की क्षमता है। हमारी तो कोई परीक्षा नहीं लेते नहीं, उनको पता है कि भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा। इसीलिए जो सन्यासी हैं, प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के शिष्य भी हैं, नए भक्तों को तो सिर पे हाथ फेरते हैं, नहीं पुचकारते हैं उसको, वेरी गुड वेरी गुड। जो पुराने भक्त होते हैं वो कितना ही अच्छा कर लें वो बोलते हैं ये क्या कर दिया, नहीं तो दिखने में लगेगा यार वैसे ठीक है नहीं हाथ तो फेर रहे हैं कर रहे हैं, है ना, पूछते हैं ठीक हो, हमसे तो पूछना भी छोड़ दिया कि ठीक हो नहीं ठीक हो, ये भी पूछा नहीं खाना खाया नहीं खाया, प्रसाद पा लिया नहीं पा लिया, उसको पूछने हैं देखो, और बोल रहे हैं जाओ उसको ले प्रसाद लेके आओ, नहीं। बल्कि कौन थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैताचार्य के जो सेवक था एक, उसने महाराज प्रताप रूद्र को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी में लिखा कि अद्वैताचार्य भगवान है, और दूसरी लाइन लिखी उन पर 100 रुपए का कर्ज है उसको माफ कर दो, है ना। तो महाप्रभु को ये बात पता चली, तो महाप्रभु ने, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, क्योंकि 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। तो महाप्रभु को ये बात पता चली तो उन्होंने उस सेक्रेटरी को बुलाया, उसको बहुत गालियां दी उसको, सेक्रेटरी ने कहा कि हाँ मैंने तो भला किया था, गालियां सुनने को मिली, हाँ। उन्होंने जाके अद्वैताचार्य को बोला देखो मैंने ऐसे किया, मुझे गालियां सुनने को मिली, अद्वैताचार्य हैरान हो गए सुन के और महाप्रभु के पास गए, और महाप्रभु को क्या बोला उन्होंने कि ऐसा कैसे हो गया कि आपने मेरे सेवक पे वो कृपा कर दी जो मुझ पर नहीं की। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उस पर आपने ऐसी कृपा कर दी, मुझे सम्मान दिए जा रहे हो, मुझे सम्मान दिए जा रहे हो और उसको आपने अपना दास स्वीकार कर लिया, मुझे स्वीकार नहीं किया। नहीं, सो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क है। जिसको भगवान आसानी से कृपा देते हैं तो कृपा है ही, लेकिन भगवान जिसके खुद ही वशीभूत हो जाए वो उस कृपा का क्या कहेगा। और उस कृपा को करने के लिए भगवान बहुत ही ज्यादा परीक्षा लेते हैं। तो भी आप पर निर्भर करता है कि आप तुरंत भगवत धाम जाना चाहते हो या परीक्षा देना चाहते हो। आशा का उत्तर दे पाया। और किसी का कोई प्रश्न? चलो अगर प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि लेट हो गया तो रोकना अच्छा नहीं। शिल प्रभुपाद की, शिशि राधा रमन की, शिशि कृष्ण बलराम की, गौर हिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हिताय गौर कृपा।